ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. பாபா நே தோ ஹமே பஹத் சுந்தர் அனுபவ கராயே ஹே, பஹத் அச்சே வரதான் தியே ஹே. இன் சப்கோ ப்ராப்த கர் ஹம் தோ யஹி சதா கேதே ஹே கி வா மேரா பாக்ய, பகவான் நே இத்னா ஊஞ்சா பாக்ய ஹமே தியா ஹே. तो चाहे साकार से, चाहे अव्यक्त से, चाहे दादियों से, चाहे हमारे वरिष्ठ भाइयों से, बहुत सारे वरदान मिले हैं. तो मुझे कहा गया कि अपने अनुभवों को शेयर करो. ज्ञान तो बहुत सुना, तीन दिन से आप हमारे अनेक भाई बहनों से बहुत कुछ सुन रहे हैं. और ये महीना है दादी जी का, तो दादी जी के भी अंग संग रहने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला. तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? बाबा से ही शुरू करूँगी, क्योंकि मैं कहूँगी मैं करीब 10 साल की थी केवल. तब सबसे पहले इस संस्था से परिचय हुआ. मेरी लौकिक माताजी को ज्ञान मिला मुंबई में, जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी बिल्डिंग में गीता पाठशाला थी छोटी सी, तो वहाँ वो जाया करती थी. तो मैं तो माँ के पास नहीं रही लेकिन बुआ के पास रही. मेरे लौकिक पिताजी, मैं बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो बुआ ने मुझे पाला और मेरी लौकिक माँ अपने मायके में थी. तो जब मेरा जन्म हुआ मैं केवल 3 दिन की थी, शरीर 3 दिन का था, तो मेरी माताजी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ. फरिश्ता ब्रह्मा बाबा उनके जैसे सामने आके उपस्थित हुए और उन्होंने ऐसे किया, मैं अभी पैदा ही हुए थे ना, और ऐसे किया और संकेत दिया कि ये बच्ची मेरी है, मैं इसका पिता हूँ और ये दे दो. तो मेरी लौकिक माँ जो अपना अनुभव सुनाती थी कि वो फरिश्ता जैसे उनके सामने आया और ये कहा कि मैं इसका पिता हूँ, ये बच्ची मेरी है, मुझे दे दो. तो मेरी माँ ने मुझे उठा के उसको दे दिया. ऐसे उसने अनुभव किया और उसके बाद वो फरिश्ता तोड़ गया और मेरी माँ को आया ये मैंने क्या देखा. तो हम तो वही थे, 3 दिन के ही बच्ची थी, लेकिन मुझे मेरी माँ ने ये महसूस किया कि ये कोई विशेष आत्मा है. और उसी दिन सवेरे ये अनुभव हुआ मेरी माता जी को और उसी दिन शाम को उनको न्यूज़ मिला कि मेरे फादर की डेथ हो गई है. वो मेरे लौकिक पिता दिल्ली में गए थे और दिल्ली से मुंबई में वो कपड़ों का थान ला रहे थे ट्रक में. यंग थे, 22 साल के थे, मेरी मदर तो 18 साल की थी और 3 साल हुए थे शादी हुए और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे 48 में. मेरा जन्म 48 में हुआ, 48 में हुआ. तो अब वो बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो रास्ते में ही ट्रक ओवरटर्न हो गई, एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी डेथ हो गई. वो सारे ये कपड़ों के थान के साथ में ही था, सोचा हम ट्रक में चलेंगे. यंग था, 22 साल का लड़का जैसा. तो मैं अब कहेंगे कि उनका मेरा साथ हिसाब किताब इतना ही था बस. बाकी न उन्होंने मुझे देखा न मैंने उनको देखा। और ब्रह्मा बाबा ने कहा ये मेरी बच्ची है। तो खैर मेरी लौकिक माता जी मेरे बुआ के पास रहती थी, क्योंकि पाकिस्तान से आए थे, कराची में रहते थे और भारत में आए जैसे रेफ्यूजी बन के। और मेरी बुआ ने हमको पाला, मेरी मदर को भी। लेकिन कुछ साल तक मेरी माँ रही बुआ के पास, लेकिन फिर अपने मायके चली गई मेरे नाना नानी के पास। लेकिन मुझे नहीं दिया, कहा बुआ ने कहा मैं इसकी पालना करूँगी। खैर तो वो तो हुआ, लेकिन जब मैं 10 साल की थी तब मेरी माँ को ज्ञान मिला। और मैं नानी के लिए थी, माँ से भी मिलती थी, माँ भी आती थी, वो कोई बात नहीं थी, लेकिन रहती थी बुआ के पास। तो एक दिन मैं नानी के घर गई तो मेरी माँ मुझे वो गीता पाठशाला में ले गई, 10 साल की थी, और मुझे वहाँ बिठा दिया जैसे बच्चों को बिठाते हैं। और मैं मुरली सुनने लगी, तो मुरली सुनते सुनते मुझे ऐसे अनुभव हुआ जैसे मैं ये सब समझ गई, मैं सब जानती हूँ, ऐसे मुझे महसूस हुआ। मुझे कुछ भी नया नहीं लगा, सुन रही थी, समझ रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे ये मेरे लिए ही है। और फिर तो मैं भूल गई क्योंकि बुआ के पास रहती थी। लेकिन अगले ही साल ब्रह्मा बाबा बॉम्बे में आए, क्योंकि बाबा हर साल दिसंबर जनवरी फरवरी मुंबई में आते थे। मुंबई में रहते थे 3 महीना और एक फ्लैट खरीद किराए पर लेते थे, इसमें बड़ा हॉल होता था। और बाबा वहाँ रह करके, क्योंकि सेंटर्स तो छोटे होते थे, तो वहाँ रह करके बाबा मुरली चलाते थे। और कई जगह से भाई बहने आते थे, तो मेरी लौकिक माता जी को निमंत्रण मिला ब्रह्मा भोजन के लिए। तो ब्रह्मा भोजन में मुझे भी ले गई, और बाबा जहाँ ठहरे थे वो मेरे घर के नज़दीक था, जो मैं बुआ के पास रहती थी, और सेंटर भी, मेन सेंटर भी वहीं था बॉम्बे में, मुंबई में। तो वो मुंबई आई, हमारे घर आई और हमको ले गई बाबा के पास। तो ब्रह्मा भोजन था। अब ब्रह्मा भोजन कैसा था, मैं पहली बार अनुभव किया, बाबा को पहली बार देखा। उस समय मैं समझो 11 साल की होगी, 59-60 ऐसे कुछ था, इतना भी याद नहीं है, वो जनवरी 60 था या 59 दिसंबर था। तो बाबा के पास ले गई। और वो ब्रह्मा भोजन कैसा होता था, करीब 50 माताएं थी, बहनें थी, और मुझे भी ले गई। तो वो 50 माताएं जैसे रेक्टेंगुलर में ऐसे जैसे टेबल है ना वैसे बैठे, और बाबा भी नीचे पट पर, कोई भी कुर्सी टेबल नहीं, पट पर ही बैठते थे बाबा, और हम सब भी पट पर ही बैठे। और सर्विंग हो रही थी, भोजन परोसा जा रहा था, और हम सब बैठ गए थे। और बाबा ने एक एक को बुलाया, और बाबा के पास एक एक आता था, और बाबा के सामने जाकर के जैसे बाबा से दृष्टि लेता था। और फिर बाबा तो बैठे होते थे नीचे ही, तो बाबा की गोद में जैसे सिर रखता था, और बाबा उनकी पीठ थपथपाते थे, और फिर कुछ वरदान देते थे, और मुख में कोई मुख में गिट्टी देते थे, चाहे रोटी हो चाहे कुछ कोई टोली हो, तो वो मुख में डालते थे। और वरदान देकर, तो दृष्टि, वरदान और टोली, जिसको बाबा कई बार कहते हैं ये 3 चीजें आपका अधिकार है, दृष्टि, बोली और टोली, तो ये बाबा ने करते थे। और फिर वापस जाते थे, फिर दूसरी बहन आती थी या जिसका ब्रह्मा भोजन होता था, तो ग्रुप ग्रुप को बाबा बुलाते थे। तो हमारी मदर का भी टर्न आया, तो मुझे ले गई थी साथ में, तो मदर का हो गया, लेकिन मैं नहीं उठी क्योंकि मुझे डर था, पता नहीं छोटे बच्चों को अलाउ करेंगे या नहीं, क्योंकि 11 साल की थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया, ये पहला वरदान जो बाबा का मिला मुझे। मैं बैठी थी वहीं, थोड़ा दूर था ये, जैसे यहाँ से ये स्टेज का अंत, तो वहाँ बैठी थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ। तो मैं बाबा के पास ऐसी दौड़ी, वहाँ से ही जैसे यहाँ दौड़ी, एकदम जैसे लगा कि चुंबक मुझे खींच रहा है, और जैसे उस चुंबक ने मुझे ऐसे खींच लिया और मैं दौड़ के बाबा को एकदम पकड़ लिया। वैसे मुझे वो भी याद है, बाबा को शेक कर दिया, छोटी तो थी और ताकत थी, और बाबा को ऐसे शेक कर लिया। तो बाबा ने उसी समय पीठ थपथपाई और बाबा ने पहला वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, वापस आ गई अपने पिता के पास। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे सच्चा पिता मिला है, इसलिए मैंने वो बताया पिता का। तो लौकिक पिता को तो देखा नहीं था, लेकिन मुझे अलौकिक पिता मिल गया बाबा। तो लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, वो तीनों पिता मैंने एक में अनुभव किया। और फिर तो जैसे बाबा ने कहा बच्ची अपने पिता के पास आ गई, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा यही घर है, यही मेरा सच्चा पिता है, और जो मुझे चाहिए था वो जैसे मिल गया। खैर फिर तो मैं वापस गई अपने घर, परंतु ये छाप मेरे जीवन में पहली पहली लगी बाबा को देख करके। फिर तो उसके बाद पढ़ती रही, और फिर क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वो जहाँ बाबा रहते थे बहुत नज़दीक था, दूर नहीं था, तो मैं रोज सुबह मुरली सुनती थी। कोई कोर्स वोर्स किया नहीं, बस मुरली सुनती थी और मुझे पूरा समझ में आ जाता था। तो मुरली सुनती थी 7 से 8, और मुरली के बाद फिर स्कूल जाती थी स्कूल यूनिफॉर्म में। तो बहुत समय जैसे दादियां हमको देखती थी, दादियों को याद होता था, अरे तो शीलू तो वही है ना जो स्कूल ड्रेस में आती थी, किताबें लेकर के आती थी, क्योंकि उस समय तो बहुत किताबें लेने पड़ते थे, बहुत पूरा वो जैसे पेटी होती थी वो स्कूल की पेटी लेके जाते थे किताबों की। खैर तो मैं रोज सुबह मुरली सुनती थी फिर स्कूल जाती थी, फिर शाम को भी कभी आती थी और फिर घर जाती थी। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद मैं मानो बाबा 3 महीना रहे, तो मैं रोज आती थी जब स्कूल जाने से पहले। तो ये चलता रहा। फिर तो पढ़ाई करती रही, बाबा चले गए वापस मधुबन, तो मैं तो सेंटर पर जाती थी, फिर मधुबन आना हुआ। मैं समझती हूँ 61, 62 होगा या कुछ याद नहीं है, लेकिन उस समय मैं मधुबन आई। तो मधुबन अपनी लौकिक माँ के साथ, मेरी मौसी सब ज्ञान में थे, तो हम मधुबन आए। तो मधुबन में बाबा से मिलना हुआ, तो साकार बाबा को तो हम पहचान तो गए, अनुभव पहला किया था बाबा का। तो जब हम मधुबन आए तो मेरी जो टीचर थी गांधी धाम की, उर्मिला बहन है, अभी काफी बुजुर्ग है, तो वो मेरी टीचर थी। तो वो उसने मुझे कहा तुम इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हो तो तुम इंग्लिश में कोई पोइट्री तैयार करो। तो इंग्लिश में ही पोइट्री लेक्चर वो सब मैंने तैयार किया जब मैं मधुबन में आई। और मधुबन में बाबा के सामने मैंने इंग्लिश में भाषण किया, इंग्लिश में वो पोइट्री सुनाई, एक्शन सॉन्ग ऐसे कुछ सुनाया क्लास में। तो बाबा को बहुत अच्छा लगा, और बाबा ने कहा बच्ची ये दूसरा वरदान, बाबा ने कहा बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। ये ब्रह्मा बाबा का वरदान मिला, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। मैं तो सुन के हैरान हो गई, विदेश क्या होता, वो तो कहाँ इतना ज्ञान था उस समय, लेकिन बाबा ने उस समय ये वरदान दिया। तो फिर देखो ये दूसरा वरदान मिला। फिर तो मैं गई वापस और पढ़ती भी रही, फिर मैं फिर मधुबन आई थी मैं अपनी माता जी के साथ, वो कौन सा साल था याद नहीं, लेकिन इन्हीं 1-2 साल के बाद। तो मधुबन आई तो बाबा के साथ हम झूले पर बैठे थे, वो दृश्य भी मुझे याद आता है। हम झूले पर बैठे थे, बाबा बीच में, मेरी लौकिक माँ और मैं दूसरे साइड पर। तो बाबा ने मेरे से प्रश्न किया, बच्ची किसके साथ झूल रही हो? तो मैंने कहा बाबा के साथ झूल रही हूँ। फिर बाबा ने पूछा और किसके साथ झूल रही हो? 12-13 साल की थी। और किसके साथ झूल रही हो? तो मैंने कहा मेरी मम्मी के साथ, मेरी लौकिक माता जी बैठी थी उस तरफ। फिर कहा और किसके साथ झूल रही हो, जैसे बच्चों से पूछते हैं। तो मैंने कहा बाबा और तो कोई भी नहीं है, बस आप है और मेरी माँ है, यही कहा। तब बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब बाबा के साथ झूले में झूलती हो तो उस समय आपके मन में क्या सोच चलना चाहिए कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी तीन हस्तियों के साथ झूले में झूल रही हूँ, सबसे बड़ी तीन हस्तियों के साथ। बाबा ने इतने नशे से कहा, तो मैं तो चुप हो गई, सुनती रही बाबा जो कह रहे हैं, तो मैं कुछ बोला नहीं। तो फिर बाबा ने कहा देखो, एक है परम पिता, सर्वात्माओं का पिता, वो शिव बाबा इनके तन में, तो उनके साथ झूल रही हो। फिर दूसरा प्रजा पिता ब्रह्मा, हाँ बाबा ऐसे कहते थे, सारी प्रजा का पिता। और तीसरा सबसे पहला देवता, कौन कौन है सबसे पहला देवता? श्री कृष्ण सबसे पहला देवता। ब्रह्मा तो मनुष्य हो गया ना, परंतु देवता पहला, जब सबसे पहला देवता कौन आता है सृष्टि पर? श्री कृष्ण। तो सब आत्माओं का पिता, परम पिता, फिर सर्व प्रजा का पिता, प्रजा पिता ब्रह्मा, और फिर सर्व देवताओं से सबसे ऊंचा श्री कृष्ण, क्योंकि वही आत्मा के श्री कृष्ण बननी है, तो वही ब्रह्मा सो विष्णु बनना है ना। तो इसीलिए ये तीन दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों के साथ मैं झूले में झूल रही हूँ। जब बाबा ने ये कहा तो मुझे इतना नशा चढ़ गया, वाह कितनी भाग्यशाली, इतनी तीन बड़ी हस्तियों के साथ मैं झूले में बैठी हूँ। आप सोच सकते हैं कितना नशा चढ़ा। ये बाबा को भी नशा होता था कि मेरे तन में कौन आए, शिव बाबा, मैं ऐसा मिचनू बनने वाला हूँ। ब्रह्मा बाबा को तो बहुत नशा था, तो वो नशा बाबा ने हम बच्चों को भी चढ़ाया। तो फिर तो बाबा के साथ भोजन भी करते थे, बाबा के साथ बैडमिंटन खेलते थे, क्योंकि बाबा ही सब कुछ था। मधुबन में कोई क्लासेस जैसे अभी होते ऐसे तो होते नहीं थे, केवल एक हिस्ट्री हॉल था, वो भी नया नया बना था। जब पहले पहले हम गए थे तो हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, टेंट लगाया था। हिस्ट्री हॉल भी 62 में बनाए, मेडिटेशन हॉल तो था ही नहीं पांडव भवन में, ओम शांति भवन तो बहुत बाद में बनाए। लेकिन 62 में जब मैं दूसरी बार गई हूँ, तब हिस्ट्री हॉल में मैंने भाषण किया। तब तीन संदलियां होती थी पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में, एक बाबा की, एक मम्मा की, और बीच में बहन कोई बैठती थी, वो योग कराती थी। तो बाबन के साथ कैसे मेरा उस समय भी मिलना हुआ। और फिर तो जब जाने का समय आया, बाबा से इतना प्यार पाया, इतना प्यार पाया, जो जाने का तो मन नहीं करे, किसका मन करेगा वापस जाए मुंबई में मायावी नगरी में, तो दिल तो नहीं हुई मुझे। तो मैं क्या किया, जब जिस दिन जाने का दिन था, मैं छिप गई बिल्कुल ऊपर छत पर जाकर के छिप गई, क्योंकि कौन आएगा मुझे देखने के लिए। तो अब जाने का समय आया, सारी पार्टी बाबा से मिल रही है, गोसुन कमसुन की टोली बाबा दे रहे हैं, और मैं तो थी नहीं। तो मेरी लौकिक माँ चिंतित हो गई, कहाँ चली गई है, बहुत ढूंढा। अब बाबा ने दो तीन जनों को भेजा, जाओ उसको ढूंढ के लाओ। अब मधुबन में मैं कहाँ हूँ, वो आखिर मुझे मिल गए, वो उन्होंने ढूंढ लिया मुझे। और मैं जैसे वहाँ बैठी ऊपर छत पर, तो मुझे कहा कि चलो बाबा बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो कहा बाबा बुला रहे हैं, बाबा के पास कैसे नहीं जाओगी? मैंने कहा मुझे वापस मुंबई नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है मुंबई। तो कहा भले मत जाओ, लेकिन बाबा बुला रहे जाओ तो सही। तो आखिर में गई, बाबा बुला रहे, तो बाबा को मैंने कहा बाबा मुझे मुंबई नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। तो बाबा ने कहा देखो तुमको पढ़ाई पढ़नी है। देखो बाबा ने कैसे मुझे समझाया, हाँ इतना प्यार से समझाया। तो बाबा ने कहा देखो तुमको तुमको तो मुंबई में जाना है, पढ़ाई पढ़नी है, बाबा तुमको विदेश भेजेगा, इंग्लिश में और होशियार होना है, तो यहाँ तो अच्छे स्कूल नहीं है, गांव है ये, तो आप पूरा पढ़ाई पढ़ लो, फिर बाबा आपको बुला लेगा। अब ये तीसरा वरदान मिला, बाबा आपको बुला लेगा, अभी आपको जाना है। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, आप बुला लेंगे। फिर तुम्हें पढ़ती रही, फिर कॉलेज गई, कॉलेज में इंटर साइंस में जब मैं थी तो उस समय मुझे डिसाइड करना था कौन सी लाइन लेनी है, इंजीनियरिंग लाइन लेनी है या मेडिकल लाइन लेनी है, उस अनुसार हमको सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। तो मुझे घर में सब कहे तो मेडिकल लाइन लो, डॉक्टर बनना है, और मुझे वो इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल लाइन का, मुझे इंजीनियरिंग पसंद थी, साइंस और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो पसंद था, लेकिन बायोलॉजी नहीं, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं तो मुझे नहीं था। लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया, घर में सब फोर्स करे तुम डॉक्टर बनो। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, ये 67 की बात है, तो बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मैं क्या करूं, सारा बताया। तो बाबा ने मुझे इसका उत्तर दिया, पत्र लिखा बाबा ने, तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है और बाबा चाहेंगे तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये भगवान बाबा ने उस समय मुझे पत्र में लिखा कि आपको रूहानी डॉक्टर बनकर विश्व की सेवा करो। जिस्मानी डॉक्टर बनना है ये तो हमने लिखा, घर में सब कहते हैं, तो बाबा ने ये जवाब दिया बाबा की ये आश है, माना डॉक्टरी नहीं पढ़ो, डॉक्टर बनना माना MBBS करना, ये तो रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, इसका मतलब नहीं पढ़ना है। और तो हमने कहा ठीक है मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे बस बाबा के पास रहना है, सेंटर पर रहना है। लेकिन सेंटर पर भी रहने के लिए परमिशन चाहिए, घर वालों की छुट्टी चाहिए, लेटर चाहिए, बिना परमिशन के लेटर के सेंटर पर भी कैसे रहेंगे। उस समय दादी जी हमारी टीचर थी, दादी प्रकाश मणि मुंबई में रहती थी, और मुंबई में रह करके सारा महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्रा और तमिलनाडु, ये जो साउथ के सेंटर्स हैं टोटल, और गुजरात महाराष्ट्र वो संभालती थी, और बॉम्बे गामदेवी सेंटर पर रहती थी, और मैं वहीं जाती थी बाबा के मन सेंटर पर जाती थी। तो मैंने दादी जी को कहा दादी मुझे सेंटर पर रहना, दादी ने कैसे कैसे रखेंगे, आपकी घर से चिट्ठी चाहिए, बिना चिट्ठी के हम ऐसे नहीं रख सकते। तो घर में मेरी बुआ भी चिट्ठी न दे, मेरी माँ भी चिट्ठी न दे, तो दोनों ही नहीं दे, क्योंकि माँ कहे तुम तो बुआ के पास रहती हो वो जिम्मेदार है, और बुआ कहे तुम्हारी माँ जिम्मेदार है वो लिख के दे रहे, मतलब इस प्रकार ये हो गया। खैर तो कोई चिट्ठी न लिख के दे रहे, दादी जी कहे तो चिट्ठी के बिना तो हम तुमते हैं। तो उस समय हमारी दीदी निर्मला थी, दीदी निर्मला जो यहाँ ज्ञान सरोवर संभालती थी, 15 साल तक यहाँ संभाला, अभी उन्होंने पिछले साल शरीर छोड़ा, तो जानते होंगे उनको, तो वो भी तो डॉक्टर रही है, ने उसको कहा था कि आप सेंटर खोलो, और सेंटर खोलो और कन्याओं की ट्रेनिंग रखो बॉम्बे में। तो उस फर्स्ट ट्रेनिंग में मैं गई थी बॉम्बे में, निर्मला दीदी के पिताजी ने मकान जो लेके दिया था वहाँ सेंटर बनाया था। तो उस दीदी से मैंने पूछा दीदी मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं घर से छुट्टी मना सेंटर पर रह सकते क्योंकि चिट्ठी देने लिए तैयार नहीं है। तो तब दीदी ने मुझे राय दी कि तुम 2 साल और BS साइंस तो हो गया, उस समय 11+2+2 था, आजकल तो 10+2+3 है, तो 15 साल की पढ़ाई तो है ही डिग्री कोर्स तक, 11+2+2 ऐसे था, तो पढ़ लो डिग्री कर लो, भले MBBS नहीं करो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं BSc करने लगी, तो 67 में BSc शुरू किया, 69 में तो दूसरा जो सेकेंड ईयर था, लास्ट ईयर था ग्रेजुएशन का, और बाबा अव्यक्त हो गए ये भी कैसे अनुभव, क्या अनुभव हुआ मुझे, क्योंकि 17-18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, वो शनिवार का दिन था। तो मैं रोज की तरह 18 जनवरी को सेंटर पर गई थी, घर में रहती थी, पढ़ती थी ना, बीएससी कर रही थी, तो मैं हमेशा रोज शाम को जाती थी, क्योंकि उस समय कॉलेज थोड़ा जल्दी था तो सुबह नहीं जा सकती थी, तो शाम को जाती थी और मैं फिर सेंटर पर सेवा करती थी, पार्टी समझाती थी, कोर्स कराती थी थे लोग। तो शनिवार का दिन था, रात को 8 बजे मैं घर गई, जैसे हमेशा जाती थी 18 जनवरी के दिन। तो जब घर गई तो कुछ नॉर्मल की तरह था। फिर जब सवेरे 19 तारीख मैं सेंटर पर आई, वो संडे का दिन था और रविवार माना बहुत सारे भाई बहन आते थे, तो जब मैं सेंटर पर गई तो मैंने देखा कि एकदम सुनसान लगा पड़ा है, कोई दादियां भी नहीं, नहीं तो बहुत दादियां आती थी, रहती थी बॉम्बे में, तो बहुत रिमझिम रहती थी, तो कोई दादी भी नहीं, दादी जी भी नहीं, कोई नहीं। तो मैंने वहां एक माता बैठी थी, वो भी शांति में बैठी थी, तो मैंने उनसे पूछा धीरे से, क्योंकि सब योग में बैठे थे जो बैठे भी थे, मुरली भी नहीं चल रही थी, तो मैंने उनसे पूछा क्यों मुरली नहीं चल रही है, दादियां कहाँ है, कहाँ है सब। तो मुझे उसी समय उस बहन ने कान में कहा कि कल रात को बाबा अव्यक्त हुए हैं और रातों रात सब मधुबन गए हैं। दादी जी तो वैसे ही मधुबन में थी, 2-3 दिन से पार्टी लेकर गई थी, लेकिन और जो बहनें थी वो सब मधुबन गए हैं। मैंने कहा मधुबन गए और बाबा अव्यक्त हुए, बाबा ने शरीर छोड़ा, बाबा चले गए। उस समय जैसे कहा ना बाबा चले गए, और उस समय मुझे याद आया कि बाबा ने ही कहा था मुझे पत्र में कि बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है कि तुम रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, और मैं तो यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, विश्व की सेवा तो बहुत दूर की बात है, तो बाबा मैंने आपकी आश पूरी नहीं की, जिसे अंदर ही अंदर मैं बोल रही हूँ। और उसी समय मुझे जैसे अनुभव हुआ, क्योंकि जैसे पता चला ना कि बाबा अव्यक्त हो गए, बाबा ने शरीर छोड़ा है, तो उस समय मेरी टांगे में खड़ी थी, टांगे कांपने लगी, एकदम कांपने लगी, मुझे उस समय आया बस अब विनाश होगा, बाबा चले गए माना विनाश, बस अभी आगे कुछ नहीं होना है, और बाबा आप चले गए अभी तो मैं आपकी आशा भी पूरी नहीं कर सकती। खैर अंदर ही अंदर ये सोच ही रही थी कि उसी समय मुझे खड़े खड़े इतना सुंदर अनुभव हुआ, जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा मेरे सामने खड़े हैं और वो बाबा मेरे सामने मुस्कुरा कर कह रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ रख कर कह रहे हैं, बच्ची मैं गया नहीं हूँ, मैं गया नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, और अंत तक बाबा बच्चों के साथ हैं और अंत में सब साथ चलेंगे। ऐसे कुछ मुझे अनुभूति हुई, बहुत सुंदर अनुभूति हुई, फरिश्ता ब्रह्मा बाबा एकदम लाइट में जैसे मुझे दिखा दिए। फिर मैंने कहा बाबा आपकी आश तो मैंने पूरी नहीं की, बाबा ने मुझे फिर सिर पर हाथ रखकर कहा बच्ची तुम आश पूरी करोगी, ये वरदान दिया, तुम आश पूरी करोगी। बस फिर तो उस समय थोड़ी आथत मिली और तो मैं घर गई, लेकिन मेरी लौकिक माता जी वो भी बहुत स्ट्रांग थी बाबा के पास, तो वो तो चली गई, मेरी मौसी भी मधुबन आ गई थी, लेकिन मेरी एग्जाम्स थे, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स मुझे देने थे, जनवरी में एग्जाम्स होते हैं, तो मैं तो जा नहीं सकी क्योंकि परीक्षा थी मेरी, लेकिन मेरा मन तो मधुबन में ही था। और फिर परीक्षा देकर मैं फिर अप्रैल मार्च में, मार्च एंड या अप्रैल बिगिनिंग में एग्जाम्स थी मेरी, और वो एग्जाम्स पूरी हुई तो उस समय मुझे पता चला कि मधुबन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा से दादी जी ने पूछा था कि बाबा अभी मधुबन में क्या करेंगे, बाबा तो चले गए तो अभी मधुबन में क्या होगा, क्या होगा। तो बाबा ने उसी समय कहा कि जो साकार में मुरलियां चली है वो रिवाइज होगी। 21 जनवरी को बाबा ने सारा भविष्य का प्लान बता दिया अब एक बाप दादा ने, और फिर कहा कि यहाँ बठिया रखो, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो कुमारियों के लिए, सब बहुत कुछ बाबा ने आगे के लिए इशारे दिए अव्यक्त बाप दादा ने। तो उस अनुसार पहली बठी हुई थी टीचर्स की, जो नई नई टीचर्स सेंटरों पर रहने लगी थी उनकी बठी हुई, वो फरवरी मार्च कुछ ऐसा था। जनवरी में तो बाबा अव्यक्त हुए, फरवरी से प्रोग्राम शुरू हो गए मधुबन में, तो फरवरी मार्च में 2 महीने की उनकी भट्टी रखी। अभी अभी नई नई टीचर्स, उस समय जयंती बहन 1968 में पहली बार बाबा से वो मिली थी, बाबा के पास मिली थी, लेकिन बाबा ने उनको सेंटर पर भेजा था, आगरा भेजा था 68 में। और वेदांति बहन भी उस समय थी, सेंटर पर रहना शुरू किया था। तो मतलब ये बहनें जो अभी मुख्य बहनें हैं वो टीचर्स बाबा के सामने समर्पित हुई थी और वो उनकी बठी हुई। फिर उसके बाद 1 महीने की ट्रेनिंग उनकी हुई जो कुमारियां थी और कॉलेज में पढ़ाई की थी, तो उसमें आशा बहन जो ORC की आशा बहन है, मैं हूँ, मैं भी उसमें थी, अभी BSc करके आए थे, और भी कई बहनें सब पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके, चंद्रिका बहन जो अहमदाबाद ये महादेव नगर में है वो, और मुन्नी बहन भी उसी में थी, हम लोग 30 कुमारियां थी, 30 कुमारियों ने हम 1 महीने की ट्रेनिंग की। और हर हफ्ते बाप दादा हम लोगों से मिलने आते थे, एक एक को वरदान देते थे, बहुत बाबा ने पालना की। और फिर लास्ट में बाबा ने यहाँ तक किया, अभी 1 महीने की आपने थियोरेटिकल ट्रेनिंग की, तो घर से आए थे पढ़ाई कर रहे थे, अभी 1 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने सेंटर पर जाओ, और सेंटर पर आप जाएंगे तभी बाबा आपको नंबर देंगे। देखो बाबा ऐसे उमंग उत्साह दिलाते थे, तो अब नंबर देंगे तो इसीलिए, और सब ने निर्णय किया हम इस सेंटर पर जाएंगे। तो उस समय राजकोट की भारती दीदी वो मधुबन आई हुई थी, और उसको बाबा ने साकार में कहा था तुम राजकोट में सेंटर खोलो, राजकोट में। तो उसने कहा, मैं दादी जी को कहा, दादी जी मैं सेंटर खोलूं लेकिन मुझे एक हैंड चाहिए। तो मेरी लौकिक नानी उस समय राजकोट में थी, तो मैंने कहा मैं राजकोट जाऊंगी तो नानी से भी मिलूंगी, बहुत उसका मोह था मेरे में, वो बुलाती रहती थी, तो मैं जाऊंगी और राजकोट के सेंटर पर भी रहूंगी। तो 3 महीना हम राजकोट सेंटर पर गए 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद, तो वहां पर रहे, और फिर बॉम्बे जाना पड़ा क्योंकि हिसाब किताब था कॉलेज का, और ये सारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब ग्रेजुएशन किया था वो तो लिया था। तो उस समय हम सब बहनों की रिजल्ट जो परीक्षा देकर के आए थे, क्योंकि अप्रैल मई का महीना था, तो अप्रैल एंड और मई जून या कब उस समय था, तो परीक्षा देकर आए थे, तो सबकी रिजल्ट मधुबन में हम लोगों को मिली घर से। अभी तो ऑनलाइन मिल जाती है, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उस समय घर से न्यूज आती थी कि भाभी तुम पास हो गई, तुम ये नंबर लिया दिया दी। तो मुझे याद है तब बड़ी दीदी जी मधुबन में थी, दीदी मनमोहिनी। तो दीदी मनमोहिनी बहुत पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर थी, रमणीक भी बहुत थी, बहुत सुंदर बैलेंस था उनके जीवन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी नंबर 1 थी और रमणीकता में भी बहुत हंसाती थी, हल्की भी बहुत थी। तो खैर, तो एक कुमारी दीदी के पास गई, दीदी मैं तो पास हो गई, मेरा फर्स्ट डिवीजन आया, मेरे इतने मार्क्स मिले, बड़े अभिमान से कहने लगी, हाँ दीदी मैं, हाँ इतना अच्छा मार्क्स मिला मुझे। तो दीदी उसकी शक्ल देखने लगी, अभी तो ट्रेनिंग की है, तो दीदी उनकी शक्ल देखने लगी, अच्छा तुम पास हो गई, बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको, लेकिन यहाँ भी तुमको पास होकर दिखाना है, तो यहाँ भी पास होकर दिखाना है, ये जब दीदी ने कहा तो थोड़ी वो उनका जो नशा था ना, मैं फर्स्ट क्लास में आई हूँ इतनी मेरे मार्क्स मिले आदि आदि, वो थोड़ा दीदी ने ठंडा किया, कम किया, ताकि इतना अभिमान मत दिखाओ, यहाँ भी तुम पास होके दिखाओ, क्योंकि सेंटर पर बाबा भेज रहे थे। फिर दूसरी बहन आई और दीदी को कहती है, दीदी मैं तो फेल हो गई, मैं फेल हो गई। तो दीदी ने कहा, फेल हो गई, अच्छा कोई बात नहीं, वहां फेल तो यहाँ पास वहां भले फेल हुई पर यहाँ तो पास है ना आप, तो ऐसे पास होके दिखाओ। तो फिर तीसरी बहन आई, तो तीसरी बहन आई तो कहा, दीदी अभी तक मार्कशीट मेरी मिली नहीं है और हमें वे तो अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो दीदी ने कहा, क्यों समझ में नहीं आता है, तुमको तो कहा है ना अभी सेंटर पर जाओ। तो सेंटर पर जाओ, तो उसने कहा ठीक है दीदी सेंटर पर जाऊंगी। फिर दीदी ने कहा, देखो देखो दीदी कैसे तैयार करती थी, दीदी ने कहा देखो तुम सेंटर पर जाओगी तो तुमको इतना इतना पानी भरना पड़ेगा, भरोगी? हाँ दीदी भरूंगी, इतना इतना तुमको हाँ ऐसे ये करना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, करोगी? हाँ करूंगी करूंगी, डरोगी तो नहीं? दीदी ऐसे मना परीक्षा लेती थी, डरोगी तो नहीं? तो कहा नहीं दीदी हम नहीं डरेंगे। और उसी इतना इतना मिर्ची खाओगी? हाँ दीदी, जो भी कहे हाँ दीदी। फिर ऐसे किया दीदी ने तो एकदम से डर गई, नहीं बाबा की उस दिन मुरली में भी आया था कि ऐसे बाबा भी करते थे और ऐसे डर गई। तो दीदी ने कही तो डर गई ये तो डर गई, तो तुम सेंटर पर कैसे रहोगी, कैसे चलोगी? नहीं दीदी मुझे पता नहीं था दीदी आप ऐसे करेंगे। तो दीदी बहुत रमणीक थी, कहने का भाव है, पर इतनी गंभीर भी थी, शिक्षा देती थी तो नंबर वन शिक्षा, ये विशेषता थी बड़ी दीदी की। तो जुलाई का महीना तो हमने बड़ी दीदी का मनाया और फिर अगस्त का महीना अभी दादी जी का महीना है। तो दादी जी को जब हमने देखा कि कैसे, क्योंकि मैं उसी सेंटर की स्टूडेंट थी और दादी हमारी टीचर थी, तो ये भी मेरा सौभाग्य है, बॉम्बे में दादी रही, मैं रोज दादी जी को देखती थी, शाम के समय में जाती थी कॉलेज से, दादी को देखती थी, रोज पत्र लिखती है, रोज बाबा को पत्र लिखती थी और वो ट्रेन से पत्र भेजती थी। अभी तो ईमेल है, अभी तो कोई फोन भी इतना सहज है, उस समय फोन भी नहीं था, वो क्या कहते हैं, लोकल लाइन तो ठीक थी लेकिन अगर एसटीडी करना हो तो इतना सहज नहीं था, क्योंकि वो एक्सचेंज के थ्रू फोन मिलता था, जो पुराने पुराने वो जानते, आजकल तो मोबाइल है आपके हाथ में ही फोन है। उस समय एक्सचेंज को कहना पड़ता था, मुझे फलाने शहर का ये नंबर चाहिए, फिर वो एक्सचेंज वाला वाले हमको फोन पहुंचाते थे और उस समय ये होता था, तो ये होता था, इसीलिए पत्र लिखती थी रोज दादी, पत्र लिखती थी और बाय ट्रेन, उस समय लेट फी पेड, तो एक डब्बा होता था लेट फी पेड का, वो जैसे वो क्या पोस्ट बॉक्स ट्रेन के अंदर, और उसी वो रात को भेजती थी और अगले दिन बाबा को मिलता था और बाबा फिर पत्र लिखते थे और रोज दादी जी को मिलता था। बाबा ने एक बार मुरली में भी ये बात कही है कि बच्चों का एक दिन भी पत्र नहीं आता है तो बाबा को ख्याल चलता है कि बच्चों ने पत्र क्यों नहीं लिखा, और उसमें दादी जी नंबर वन थी। एक बार दादी जी नहीं लिख पाई क्योंकि समय नहीं था और कोई सेवा थी, तो बाबा का फोन आ गया साकार में, और वो भी क्योंकि ऐसे लाइन जल्दी नहीं मिली तो लाइटनिंग कॉल करते थे माउंट आबू से, 8 गुना उसकी कीमत थी, 8 गुना फोन की कीमत, आप सोचो उस समय का क्या हाल था, 8 गुना। रात को फोन जल्दी मिलता था और आधा प्राइस था सुबह तक 5 बजे तक, रात को 9 से या 10 से 5 तक, उसके बाद फुल रेट। तो इतना भी ध्यान रखते थे कि भाई फुल रेट में फोन नहीं करना है, जब हाफ रेट हो ना तब फोन करना है, उस समय बातें थी। तो इसीलिए रोज बाबा, क्योंकि दादी जी बाबा का, क्योंकि बॉम्बे में बहुत कारोबार होता था, पर्सेस बनाना और सौगाते बनाना, ये सब बॉम्बे से जाता था बाबा के पास, और दादी जी उसके लिए जिम्मेदार थी मुंबई में, ये पर्स चाहिए, ये साइज पर्स चाहिए, थैला चाहिए, वो चाहिए, बच्चों को देना है, जो भी चीजें हैं वो बॉम्बे से मेनली मंगाते थे या दिल्ली से मंगाते थे, शॉल मंगानी है कुछ भी, क्योंकि ये सब दिल्ली या बॉम्बे उस समय यही बड़े शहर थे तो वहां से मंगाते। मुझे याद है पहली बार जब मैं मधुबन गई थी तो बाबा और मम्मा दोनों ने सौगात दी हमको, छोटी थी, मानो आप सोचो 12 साल 13 साल की थी, तो हमको एक शॉल दी, बाबा ने शॉल दी और मम्मा ने एक पर्स दी, उस समय वो मोतियों की पर्स वो चलती थी, मोती छोटी सी, तो मोतियों की पर्स दी मम्मा ने, और मम्मा ने क्या कहा, इस पर्स में ना ज्ञान रत्न डालना, वो भी मुझे याद आता है मम्मा ने ये कहा था, ज्ञान रत्न डालना। तो इसीलिए मम्मा की मुरली बाबा की मुरली तो हम बहुत, इतना प्यार होता था, नया नया टेप रिकॉर्डर आया था तो मुंबई में बाबा ने कैसे एक टेप मशीन भेजी थी, वो इतना बड़ा बड़ा स्पूल होता था, वो जैसे कैसेट है ना बड़े रूप में, और वो भेज, बाबा ने विश्व रतन दादा को कहा कि बॉम्बे में जाओ और बाबा की आवाज सबको सुनाओ। तो मैं खास वो बाबा की मुरली आवाज जो बाबा का था वो सुनना था, तो मैं उसी समय जाती थी, मतलब बाबा की मुरली से प्यार, जन्म हमारा बाबा की मुरली से ही हुआ। तो दादी जी को हम देखते थे। तो खैर फिर उसके बाद तो मैं बॉम्बे आई वो भट्टी करके, फिर राजकोट जाकर फिर मेरी बुआ ने कहा आप डिसाइड करो आपको क्या करना है आगे। तो मैंने कहा मुझे तो सेंटर पर रहना और मुझे चिट्ठी लिख के दो। तो फिर चिट्ठी भी मिल गई, पढ़ाई भी पूरी हो गई, सब कुछ जो कॉलेज का हिसाब किताब था वो भी पूरा कर दिया, किताबें लौटानी थी, सर्टिफिकेट लिया और सीधा सेंटर पर आ गई। तो 69 में मैं बाबा के पास समर्पित हुई, 2 साल पढ़ाई की, वो भी अच्छा था, कल्याणकारी था, ग्रेजुएशन हो गया। तो फिर उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी मुंबई आए थे, क्योंकि सेंटर पर रहना शुरू किया बॉम्बे के, तो दादी प्रकाशमणि सेंटर पर आए थे। तो दादी जी को मैंने कहा दादी मुझे मुंबई में नहीं रहना है, मुंबई मायावी नगरी है, मुझे नहीं रहना है मायावी नगरी, मुझे मेरे मुख से सारा निकलता था, मेरा कजिन अमेरिका में था, वो कहता था और आगे पढ़ो मैं तुमको अमेरिका बुलाऊंगा। मैंने कहा मैं जो अमेरिका नहीं जाना है, वहाँ मायावी है, माया है, माया 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 बहुत करती थी मैं। खैर तो एक ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा, बुआ मुझे लेके गई, तो कहा कि ये पढ़ती नहीं है, हाँ ये विदेश नहीं जाती है, सुनती नहीं है। तो उसने मेरा हाथ देखा और कहा ये तो विदेश बहुत बार जाएगी, इसकी तो विदेश की लाइन बहुत पावरफुल है, हो जाएगी। और उसने यहाँ तक कह दिया कि 25 साल की उम्र में ये विदेश जाएगी, 25 साल, उस समय तो मैं केवल 18 साल की थी या कुछ था, 25 साल की उम्र में, सोचा कैसे जाऊंगी पता नहीं, क्योंकि बाबा ने तो वरदान दे ही दिया था। खैर तो ये तो था, फिर कहा ये पढ़ती नहीं है, तो उसने कहा ये बहुत पढ़ेगी, बहुत डिग्री लेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर, ये डिग्री तो है ना, बाबा ने हम सबको दी है, ये MSc माना क्या, तो मास्टरी तो ये है ही है, BSc MSc बैचलर और मास्टर। तो खैर ऐसे तो फिर तो मानो, और सचमुच मैं सेंटर पर रहने लगी। तो दादी जी को मैंने कहा दादी मुझे मुंबई में नहीं रहना है, तो दादी ने कहा तुम कहाँ जाना चाहती हो, तो मैंने कहा मुझे वहाँ भेजो जहाँ इंग्लिश में सेवा हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की पढ़ी और बाबा ने मुझे कहा तुम इंग्लिश में होशियार हो, तुमको बाबा विदेश भेजेगा, परंतु कम से कम भारत में तो वहाँ सेवा करो इंग्लिश है, तो साउथ इंडिया में इंग्लिश की सेवा है बहुत, क्योंकि वो लोग इतना हिंदी नहीं जानते हैं। तो दादी जी ने मुझे बैंगलोर भेजा, तो बैंगलोर में मैं 1.5 साल रही, परंतु इंग्लिश में सेवा की बजाय कर्नाटक में रहने के कारण कन्नड़ा सीख लिया मैंने, क्योंकि क्योंकि इंग्लिश भी बहुत कम बोलते, कन्नड़ा 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 ये सब चलती है, तो इसी बहाने मैंने कन्नड़ा भाषा सीख ली, समझ लेती हूँ अभी भी, बोलती भी थी, 1 साल रही 1.5 साल। फिर मैं मधुबन आई तो दादी जी ने कहा अभी आप काठमांडू जाओ, नेपाल जाओ। तो नेपाल में वहाँ बहुत बड़ी वो एग्जीबिशन लगाई थी और उस समय विदेशी लोग बहुत आते थे नेपाल में, काठमांडू में खास, और ड्रग्स बहुत लेते थे हिप्पी लोग, हिप्पी लोगों का ना वो सारी दुनिया घूमते थे ऐसे ऐसे विदेशी लोग। तो आप और वो वहाँ ही गढ़ था उनका, काठमांडू में ड्रग्स उनको मिलते थे। तो कहा कि आप वहाँ जाओ और एग्जीबिशन लगानी है जहाँ विदेशी आएंगे। तो मैं काठमांडू गई और एक साल वहाँ रही। तो काठमांडू में मैं नेपाली भाषा सीख गई क्योंकि एक साल रहे, तो ऐसे भाषाएं सीखे। और फिर वापस मधुबन आई एक साल, और उसमें उस समय मेरी इच्छा थी कि स्नोफॉल कैसे होता है, बर्फ कैसे गिरती है, वो मैंने कभी देखा नहीं था। मुंबई में तो बर्फ तो क्या, हम लोगों ने स्वेटर भी नहीं पहना था, जरूरत ही नहीं होती। मुंबई में गर्मी होती है, ठंडी तो कभी होती नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए बर्फ देखनी थी। और सचमुच जनवरी मास में मैंने बर्फ देखी गिरती हुई। वो मजेदार बात ये थी, तो जब ठंडी बहुत थी तो मैंने देखा भाई लोग जो है ना बोल रहे हैं तो मुंह से धुआं निकल रहा है। तो मैंने कहा ये धुआं क्यों निकल रहा है, सिगरेट तो पी नहीं रहे ये धुआं क्यों निकल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा कि मैं भी जब बोलती हूँ मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है तो बोला नहीं यार ठंडी में ऐसे मुंह से धुआं निकलता है क्योंकि अंदर की गर्मी शायद बाहर निकलती होगी तो धुआं निकलता है। तो मैंने कहा अभी फिर मधुबन आना था, तो मैंने कहा मुझे बर्फ देखनी है कैसे यहाँ स्नोफॉल होता है, क्योंकि नेपाल में तो बहुत होता है, हिमालय पहाड़ है वहां नजदीक। तो सचमुच जिस दिन हम निकल रहे थे काठमांडू से वापस, क्योंकि बाय रोड आए वीरगंज, बाय रोड आए और फिर वहां से ट्रेन पकड़नी थी काठमांडू जाने के लिए। उस समय भी हवाई जहाज का इतना सहज साधन नहीं था, तो ट्रेन से आना, फिर ट्रेन से फिर पटना तक आए, पटना से फिर गंगा पार करने लिए शिप होता था तो जहाज से जाना होता था। तो मानो ट्रेन का सफर, फिर जहाज का सफर, उसके बाद फिर कहा बैलगाड़ी का सफर, पता नहीं इतने सारे साधनों से सफर करके हम काठमांडू पहुंचे हैं कितने दिनों के बाद। तो मैं तो देखती हूँ जब नेपाल के भाई बहने आते हैं कितना दूर से आते, आजकल तो सहज भी आए, फ्लाइट मिलती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु उस समय की बात है। तो जब वापस आ रहे थे बाय रोड तो इतना सुंदर वातावरण, सफेद 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 बर्फ गिर रही थी और इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये भी मेरी इच्छा पूरी हुई, नेपाल से काठमांडू से हम नीचे उतर रहे थे। खैर फिर जब मधुबन गई तो दादी जी ने फिर मुझे कहा अभी तुम हैदराबाद जाओ, तो क्योंकि उस समय कुलदीप बहन जो हैदराबाद में है उनके लौकिक पिता को साकार बाबा ने कहा था कि हैदराबाद में सेंटर खोलो, वहाँ आंध्रा में कोई सेंटर नहीं थे, आंध्र प्रदेश में कहीं भी सेंटर नहीं थे। तो बाबा ने उनको बोला, उनके पिता कुलदीप बहन के वो मिलिट्री में थे और रिटायर हो रहे थे, तो बाबा ने उनको कहा, तो दादी जी को उन्होंने कहा मैं हैदराबाद में सेंटर खोलूंगा लेकिन मुझे हिंदी और इंग्लिश स्पीकिंग बहन चाहिए। तो अब मैं काठमांडू से आई थी तो दादी ने मुझे कहा तुम हैदराबाद जाओ। अब हैदराबाद एक साल रही तो वहां तेलुगु सीख लिया तो कन्नड़ा तेलुगु ये सीख लिया, नेपाली। फिर जब हैदराबाद में मैं थी तो उसके बाद फिर दादी जी को निमंत्रण मिला कि अभी विदेश में कोई सेवा है, हांगकांग में सेवा है, तो उस बहन जो बहन सेंटर खोलने वाली थी हांगकांग में, उसका बेटा हांगकांग में रहता था, तो उसने कहा कि माँ को कहा मैं तुम्हारे लिए यहाँ सेंटर खोल के देता हूँ, तुम हांगकांग में आके खोलो। तो दादी जी को उसने कहा कि अब मैं हांगकांग में सेंटर खोलूँ लेकिन मुझे एक हैंड चाहिए, बहन दो जो हिंदी सिंधी इंग्लिश तीन भाषाएं जानती हो, और मैं तीनों भाषाएं जानती हूँ कि सिंधी हूँ बाय वो लैंग्वेज। तो दादी जी ने कहा अच्छा तुम जाओ बॉम्बे जाओ पासपोर्ट बनाओ। तो देखो 73 में मैं फिर बॉम्बे में आई और उस समय कोई सेंटर नया था, मुझे दादी जी ने वहाँ भेजा। फिर 74 में हम लोगों को अफ्रीका जाने का निमंत्रण मिला, और वो भी कैसा संयोग था कि एक भाई अफ्रीका से आया था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी तो पत्नी की याद में उसको एक मंदिर बनाना था लुसाका, जाम्बिया देश में अफ्रीका में। तो वो कैसे क्रॉस कर रहा था मुंबई में, और उसने हमारा मेला चल रहा था मुंबई में, ये 74 फरवरी की बात है। तो मैं तो गामदेवी रहती थी और पासपोर्ट मेरा बन चुका था, हमको तो हांगकांग जाना था, लेकिन उस समय उसने कहा कि ये वो जो ओपनिंग मॉडल था हमारे मेले का, वो एक मंदिर का शेप था जिसमें लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा ये तीन देवियां बिठाई थी, और कलकत्ते से कारीगर आए थे उस मंदिर का वो आउटलाइन बनाने, कपड़े से बनाया था बहुत सुंदर। तो वो जब वो रास्ते से पार कर रहा था तो अंदर आ गया, कहा कि ये नक्शा जो है ये मुझे इसका फोटो मिल सकता है, क्योंकि मुझे अपने देश में मेरी पत्नी के नाम पर मुझे मंदिर बनाना है, तो इसका नक्शा इसका फोटो चाहिए। फोटो तो था नहीं उस समय, ये मोबाइल तो थी नहीं जो कैमरा लो फटफट हरे के पास कैमरा है, वो तो था नहीं, न कोई कैमरा थी न उनके पास थी। तो कहा आप सेंटर पर आइए, वहाँ आपको फोटो देंगे। और सेंटर पर वो आया और उसको ज्ञान इतना अच्छा लगा जो बात मत पूछो। उसने कहा इतना अच्छा ज्ञान अफ्रीका में आप लोगों ने दिया है? तो दादी जी उस समय आए हुए थे बॉम्बे, दादी जी ने कहा नहीं अफ्रीका में अभी कोई सेवा नहीं हुई है। तो उसने कहा अफ्रीका में ये ज्ञान सब स्वीकार करेंगे, आप क्यों नहीं आप अफ्रीका में सेंटर खोला है? तो क्या कोई निमंत्रण देता है तब हम बहनों को भेजते हैं? तो उसने कहा मैं देता हूँ, और एक इंग्लिश स्पीकिंग बहन दो, एक गुजराती स्पीकिंग बहन दो, क्योंकि गुजराती लोग बहुत है ना उस समय अफ्रीका में, तो गुजराती। तो वेदांती बहन एक सेंटर पर रहती थी मुंबई में और मैं दूसरे सेंटर पर, हम लोगों ने दोनों ने मेले में एग्जीबिशन वो शिविर कराई थी। तो दादी जी ने हम दोनों को 74 में अफ्रीका भेजा, तो वो ज्योतिषी की बात ठीक हो गई सिद्ध हो गई थी। तब मैं 25 साल की थी, 74 की बात है। तो उसी समय हम गए थे, तो अफ्रीका में बहुत सेवा हुई और फिर बाबा के बहुत वरदान मिले उस समय। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में कहा कि कैसे धरनी तैयार है, अभी आज तो बाबा ने कहा बीज भी पड़ चुका है, अभी बीज को पानी देना है। तो उस समय मैंने बाबा से पूछा था, पहली बार विदेश जा रहे तो अव्यक्त बाबा से मैंने पूछा बाबा आप विदेश में हमें भेज रहे हैं वहाँ क्या सेवा करेंगे? तब बाबा ने कहा धरनी तैयार है, आपको जाके बीज डालना है, ये बाबा ने उस समय कहा था हमको। तो सचमुच वहाँ गई, इतनी सेवा जो बात मत पूछो। अफ्रीका के कितने देशों में हमने सेवा की, अभी तो अफ्रीका में 54 देश है, पूरा खंड है ना अफ्रीका, हर देश में बाबा का सेंटर है अभी इस समय। तो देखो, तो हम भी कितने देशों में गए और हमने बीज डाला। फिर हम मॉरिशियस आए, तो मॉरिशियस में भी बाबा की बहुत सेवाएं हुई, बहुत सेवाएं। तो वहां तो सेंटर ही खोल दिया, और तो 75 से मैं मधुबन में सेंटर पर रही, मॉरिशियस का सेंटर बनाया अफ्रीका में, फिर वेदांति बन गई। फिर 76 में जब मैं मधुबन आई तो उस समय दादी जी ने कहा भी अब मुझको मधुबन में रहना है, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत आने लगे थे, उनके लिए ट्रांसलेशन करना क्लासेस कराना। तो बाप दादा ने दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, और मधुबन में जब रहना शुरू किया फिर तो बहुत सेवाएं होती थी, आप समझ सकते हैं, फॉरेनर्स बहुत आते थे, कितने देशों में सेवा केंद्र खुल गए थे उस समय। और फिर उस समय बाबा का वरदान मिला, बाबा अव्यक्त बाबा ने मेरे से पूछा तुम कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो बहुत है, दूसरी भी बहने हैं जो सेंटर पर रहती वो ज्ञान गंगाएं हैं, आप भी ज्ञान गंगा तो हो ही, और कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ, बहती गंगा। लेकिन बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो बहने हैं जो सेंटरों पर रहती है, क्योंकि उस समय सेंटरों पर जो बहने रहती थी कोई भी बहन एक सेंटर पर फिक्स नहीं थी, आज इस सेंटर पर कल दूसरे सेंटर पर परसों तीसरे सेंटर पर, हाँ वो ट्रैवल करते रहते थे एक के बाद दूसरे में। तो बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो बहने हैं, वो सेंटरों पर रहती है, आज इस सेंटर पर है 6 महीने के बाद दूसरे सेंटर पर जाएगी फिर तीसरे सेंटर पर, आप कौन सी गंगा हो? अब तीसरी गंगा का नाम तो मुझे आई नहीं, और कौन सी गंगा होती है? तब बाबा ने कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, हर की पौड़ी की गंगा, हर की पौड़ी की गंगा पर सारी दुनिया आती है। हर की वो गंगा भी बहती है लेकिन वो स्थान का महत्व है। तब बाबा ने कहा कि हर की पौड़ी की गंगा और सारी दुनिया तुम्हारे में नहाएगी। ये बाबा ने उस समय इतना सुंदर वरदान दिया। तो फिर आगे बढ़े तो बाबा ने तो बहुत जगह भेजा। 1982 में मुझे दादी जी ने श्रीलंका भेजा, क्योंकि तब मद्रास में रोजी बहन रहती थी, तो श्रीलंका का कनेक्शन भारत से था। तो श्रीलंका में उसने सेंटर खोला, तमिलनाडु के नज़दीक है श्रीलंका, तो वहाँ खोला। तो उनको बहन चाहिए थी इंग्लिश में बोलने वाले, तो दादी जी ने मुझे भेजा। मैं 3 महीना श्रीलंका में रही, अफ्रीका की सेवा करके मधुबन आई और फिर श्रीलंका गई 82 में। तब वहाँ हमने तमिल भाषा सीख ली, थोड़ी बहुत तमिल भी आ गई, तो तेलुगु तमिल कन्नड़ा ये सब भाषाएं आ गई, थोड़ा बहुत समझ तो लेती हूँ। फिर मैं मधुबन आई, क्योंकि उस समय बरसातों में कोई सेवा नहीं होती, मई जून तो चलो ठीक है, बाबा के बच्चे आते थे, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ बहुत बारिश होती थी। अगस्त महीना माना डिसगस्ट, इतनी बारिश, इतनी 24 घंटा बारिश होती थी, सूरज का तो नाम निशान नहीं होता था। एक बार दीदी जी ने किसी को पत्र में लिख दिया कि सूरज भाई गुम हो गया है। सूरज भाई गुम हो गया, वो कौन सा सूरज भाई? वो सूरज भाई तो गुम ही हो गया, क्योंकि सारा दिन 24 घंटा बारिश बारिश बारिश, बादल और बारिश, तो डिसगस्ट ऐसा होता था। तो देखो तो उस समय दादी जी मुझे कहीं ना कहीं भेजती थी। फिर 85 में दादी जी ने मुझे पूरा एशिया का टूर करा, एशिया 12 देशों में जाना हुआ एशिया में। फिर 91 में पूरा यूरोप का टूर किया, 12 देश 13 देश उसमें, तो मानो तो अभी तो मैं कहूँगी 75 देशों से भी ज़्यादा, और कई तो कई हर कितने देशों में कई बार गई हूँ। ये बाबा की सेवा है। अभी भी मैं 3 देशों से होकर के आई हूँ, अभी भी जुलाई जून जुलाई अगस्त में, पहले मॉरिशस गई, वहाँ पर भी 50 साल मनाया, फिर अफ्रीका गई क्योंकि वहाँ 50 साल पहले गई थी 74 में, और अभी 2024 में 50 साल के बाद, बीच में गई हूँ लेकिन अभी वो 50 साल का मना रहे हैं, 50 साल अफ्रीका की सेवा के। फिर उसके बाद वापस आई, तो फिर अभी बर्मा होकर के आई हूँ। बर्मा में बहुत सुंदर सेंटर है, बर्मा में रिट्रीट सेंटर है, बर्मा के भाई बहने कितने आते हैं मधुबन, इतनी कन्याएं हैं वहाँ बर्मा में बाबा के पास समर्पित रूप से, और इतने सेंटर खोल दिए, जबकि वहाँ पर मिलिट्री राज्य है, हमेशा डर रहता है कभी भी कोई बम गिरा दे कुछ भी कर दे, लेकिन बाबा के बच्चे बहुत निर्भय है और इतनी सेवाएं हो रही। मैं 8 दिन बर्मा रहकर 2 दिन पहले ही आई हूँ, तो अभी आपसे मैं मिलने आई हूँ और थोड़ा सा अनुभव जो सुनाया, अभी तो टाइम हो गया है, अभी पूरा करती हूँ। अनुभव तो इतना है सारी रात सुनाते रहे, लेकिन अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।